विश्वात् इत्यादि हैं तबे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ॐ शांति शांति शांति
श्लोक संख्या चार बार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमति चाधिदैवादितापै पापैरोगैर्वियोगै स्तनवसितवपु पौढिहीनं च दीनं मिथ्या मोहाभिलाषै भ्रमति मम मनो दुर्जटे ध्यान शून्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो नो सक्यं स्मार्त कर्म प्रतिपद गहन प्रत्यबायात्कुलाख्यम् श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलभिहिते ब्रह्म मार्गे सुसारे नास्था धर्मे विचार श्रवण मननयो किं निदिध्यासितं वै क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो क्षन्तव्यो मे परा शिव 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 भो श्री महादेव
शंभो।
हे महादेव, हे शिव शंकर, मेरे अपराधों को क्षमा करो।
क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो।
शिव भगवत भक्तजन प्रातःकाल इस प्रातःकाल के बेला में विगत दिन कम से कम जीवन के 80 अतीत को भी अगर छोड़ दे, कल भी हमने जो अन्याय किया, ज्ञानतः अथवा अज्ञानतः, जान करके अथवा अनजाने, हे शंकर हमें क्षमा करो। इस अपराधों को क्षमा करो। निष्कपट भाव से सच्चाई को स्वीकार करते हुए परमात्मा से क्षमा मांग लो। भाई नारायण, इस संसार में कोई क्षमा करते नहीं है। स्वार्थ के लिए शायद कुछ समय के लिए हमें वो क्षमा कर भी दे, परंतु वो स्वार्थ के परवश होकर के हमारे अपराधों को अन्यायों को क्षमा करते हैं। परंतु ईश्वर जो हमारे परम प्रिय है, हम कितने भी अपराध करें, आज तक तो नारायण क्षमा करके आ रहे हैं। हमने तो आज तक मांगा ही नहीं क्षमा, परंतु दिल से हृदय से अपने अपराधों को देखते हुए अगर निष्कपट भाव से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, नारायण वो क्षम्य हो जाता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद् गीता जी में यही तो बड़ा संदेश दिया हमारे लिए, और इसीलिए नारायण गीता आज भी उतना ही प्रिय और प्रासंगिक। पूर्व जीवन प्रीवियस लाइफ आपने कैसा क्या किया, किस रूप से बिताया, उसको गिन करके सोच करके विचार करके अपने समय को बर्बाद न करो। आज से इस घड़ी से इस पल से ही हमारा जीवन शुरू, यह मान करके जीवन को एक परिवर्तन, एक दर्शन, एक दिशा दो। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो। इससे बड़ा आश्वासन और क्या मिल सकता है ना? अगर तुम सुदुराचारी भी हो, केवल दुराचारी नहीं, अगर इस मुहूर्त से तुम भजते माम, भगवान कह रहे नारायण कोई लौकिक सर्टिफिकेट नहीं, मान्यता नहीं, ईश्वर कह रहे हैं साधु रेव समन्तव्य, वो साधु है, वो सज्जन है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं जीवन भर की साधना दुर्जनहा सज्जनो भूयात। जीवन में जो दुर्जनता है, दुर्वृत्ति है, उसको सुधारो, तुम सज्जन बनो। वासना कामना अपने वृत्तियों के द्वारा हम दुर्वृत्त बने हुए हैं नारायण। इसीलिए उपनिषदकार कह रहे हैं सज्जन बनो, दुर्जनता को त्याग करो। जानबूझकर भी हम कर लेते हैं, कभी कभी विवश अवश होकर के हम उस दुर्वृत्त जो कि दुर्दमनीय है वो वृत्तियों को हम संभाल नहीं पाते हैं। विचार करते हैं संभालने के लिए, सोचते हैं बुरा है, करना नहीं चाहिए, परंतु ऐसी एक परवशता नारायण, बिल्कुल परवश होकर के हम, जैसे कोई हमें ले जा रहा है। सप्तसती चंडी में मेधस ऋषि प्रार्थना करते हैं बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, हे मां कोई बलपूर्वक मुझे खींच करके वही वृत्तियों की परवश होकर के ले जाती है। ऋषि कह रहे हैं उपनिषदों में सज्जन बनो। अधिकतर समय हम अपने बारे में सज्जनता का ही सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं, परंतु नारायण कहने बोलने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए, झांकने के लिए एक अवसर दिया है परमात्मा ने, और इसको देखते हुए अगर मन में कभी एक सत्य को स्वीकार करने का हिम्मत हो, तो फिर एक ऑप्शन, एक संभावना हमारे जीवन में है, वही है क्षमा। अरे आज तक तो वो हमारे कितने कर्मों का, कुकृत्यों का, जानबूझ करके अन्याय किया उसका भी क्षमा किए, तो क्या जब मैं जान करके, देख करके अपने जीवन को उनके पास निवेदन करूंगा, क्या ये क्षम्य नहीं होगा? परंतु वो विश्वास, वो दृढ़ता और वो निश्चयता के साथ उनके पास जाओ। कोई संशय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं जीवन में, निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से पूरा खोल करके उनको बताओ। कोई लुका छिपी वाली बात नहीं है, वो हम कितने भी छिपाने की कोशिश करें वो तो जानता ही है, परंतु जब आप स्वयं खोल देते हैं तो वो और प्रसन्न हो जाता है कि चलो अपने चालाकी से वो काम नहीं किया। वो है प्रार्थना। इसलिए दैनंदिन जीवन में हम प्रार्थना करते नहीं है ये बात नहीं, अधिकतर समय प्रार्थना कामनाओं से प्रेरित, अपनी वासनाओं से जर्जरित और बहुत ही स्थूल कामना चाह को लेकर के हम उनके पास पहुंचते हैं। और उस प्रार्थना में भी कहीं संशय, विपर्जय, प्रमाद ये सब भी होता है। फिर भी देखो कितना करुणावान है कि हमारे उस चालाकी से भरा हुआ प्रार्थना भी वो मंजूर कर देते हैं। इसलिए नारायण एक प्रार्थना जीवन में ऐसा भी करने का मन बनाए, तैयार हो जाए कि जहां बस केवल और केवल आपके ओपननेस हो, खोल करके आप उनसे अपने दोषों को, त्रुटियों को, दुर्वृत्तों को, वृत्तियों को निवेदन कर सको। मुझे तो लगता है कि जीवन भर अगर हम साधना करें, चेष्टा करें, सघन चेष्टा करें, तो एक समय हम कर सकते हैं प्रार्थना संभाल करके, जिस प्रार्थना में कोई संसारिक वस्तु संसार न हो, जिस प्रार्थना में आंतरिक कोई कामना न हो, जिस प्रार्थना में कोई क्षणिक भंगुर चीजों की मांग न हो, जिस प्रार्थना में केवल और केवल एक निवेदन हो, और वो भी निवेदन केवल अपनी अपराधों को क्षमा करने का। इसलिए नारायण एक संभावना जीवन में जरूर बनाए कि हम कम से कम निष्कपट रूप से हम खुद को प्रस्तुत करें अपने प्रिय के समक्ष। अरे वो आपके प्रिय है, जगत संसार के प्रिय की तरह नहीं। जगत संसार के हर संबंध के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है नारायण। शायद उस स्वार्थ को हम देख नहीं पाते हैं, परंतु स्थान में कभी संभावना हो तो वो निकल आता है। तब व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से कर रहा था तो वो सामने वाला स्वार्थ को लेकर के आ रहा था, तो निस्वार्थ व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, संसार से वैराग्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। परंतु इस स्वार्थ से ऊपर उठ करके, स्वार्थ संबंधियों से, संबंधों से ऊपर उठ करके कभी एक निस्वार्थ कर्म, मैं इसी को निस्वार्थ कर्म कहूंगा, एक निस्वार्थ सेवा और एक निस्वार्थ उपासना हो, जिस उपासना में बस केवल और केवल ईश्वर से एक प्रार्थना हो। नारायण यही है प्रार्थना का स्वरूप। जिस प्रार्थना से हम परिचित है वो प्रार्थना बहुत नगण्य है, वो तो कामना है। कामना को कोई अगर पूर्ण कर देता है तो वही हमारे उपास्य हो सकता है, वो ईश्वर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ईश्वर के लिए ईश्वर को प्यार करो, चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए ईश्वर से प्यार नहीं। ईश्वर को माध्यम न बनाओ, ईश्वर को साधन न बनाओ, ईश्वर ही साध्य है और उस साध्य को आप अपनी समर्पण और प्रार्थना के द्वारा ही, यही आपके पास साधना है और उस ईश्वर साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। नारायण, कभी हम विचार नहीं करते हैं अगर उनको जीवन के साध्य और साधन के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं तो हमारे जीवन में क्या जरूरतों को क्या वो पूर्ति नहीं कर सकते, क्या हमारे छोटी मोटी जो नित्य दैनंदिन जीवन की जो जरूरत है वो नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं अविश्वास है और वो विश्वास से भर कर के जब व्यक्ति जीवन को सौंप देते हैं तो फिर उनका जीवन में कोई और करने का बचता नहीं है। एक मां की दो संतान, एक संतान बिल्कुल होशियार है, वो खुद अपने काम अपने जीविका को चलाने में सक्षम है, मां उसके लिए चिंता करती है परंतु उस प्रकार नहीं जो एम्बेसाइड चाइल्ड होते हैं, जो बच्चा बिल्कुल दिमाग से छोटा है, जो बच्चा दिन भर केवल मां के आश में बैठे रहते हैं कि मां खिलाए तो खाऊं, मां पिलाए तो पीऊं, मां उठाए तो उठूं, मां बैठाए तो बैठूं, मां ले जाए तो जाऊं, उसका कोई फिक्र नहीं होता है। उसके लिए मां फिक्र में पड़े रहते हैं, मां के जीवन भर, मां के जीन इस दिन भर वही चिंतन में। जो होशियार है उसके लिए भी मां चिंता करती है परंतु उतना चिंता नहीं, वो ठीक से पहुंच गया, ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस से आया, ठीक है, कुशल क्षेम पूछते हैं, परंतु मां की सारी वृत्ति चित्त की उस बालक के ऊपर है। तो नारायण, जीवन में ऐसा अगर हम सारे अपने वृत्तियों को, अपने अहंकार को, अपने कामनाओं को, अपने छोटी मोटी तुच्छ मांगों को, अपने स्वार्थ को छोड़ करके पूर्ण और पूर्णता के साथ पूर्णाभिषेक हो जाए जीवन में, तो नारायण वो जीवन एक दिव्य होता है। इसीलिए भक्त के जीवन में भक्त ईश्वराधीन नहीं, ईश्वर भक्ताधीन है। हमारे में वो योग्यता है कि हम ईश्वर को पुकारे कि ईश्वर हमारे भक्ति रूपी डोर से बंध जाए, और यही है सच्चा भक्ति। भक्त का लक्षण ही यही है। इसीलिए नारायण प्रार्थना इतना आसान नहीं, मुझे मैं जब भी ये करता हूं मुझे सबसे बड़ा कठिन काम तो यही लगता है। मुझे ज्ञान की बात बोलना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बुद्धि की एक शुद्धि जरूर है उसमें, उसमें समझने की समझाने की भी बात है बहुत है, उसमें समय भी काफी हम व्यय कर सकते हैं, परंतु जब मैं प्रार्थना और भक्त और भक्ति ये सब शब्द और पढ़ने कहने की बात, तब मुझे बहुत ये होता है कि देखो जिस मार्ग पर हम अभी पांव उठाए नहीं है, जब देखता हूं तो लगता है बिल्कुल कहीं कहीं दूर उस मार्ग के बारे में बताना, जहां जिस मार्ग को दिखाई नहीं नारायण उसके बारे में बोलना, तो फिर एक अंदर से आवाज आती है कि इसको बोलते कहते देखते ही तुम्हारे अंदर से भी एक प्रार्थना तो जग सकता है कि दिखाओ कम से कम, देख तो लूं। वो मुझे देख रहे दिख रहा है मंदिर के द्वार शिखर, तब मैं चलूं। इसलिए नारायण प्रार्थना में वो शक्ति है जो ईश्वरीय शक्ति कृष्ण है क्या नारायण? आप कोई भी इष्ट को लो, कृष्ण लो, राम लो, कृष्ण वो शक्ति है जो आपके अंदर मौजूद है और आपके अंदर मौजूद रह करके आपके सारे वृत्तियों को वो देख रहे हैं, अपने इंद्रियों को वो चला रहे, सामर्थ्यवान कर रहे, शक्ति दे रहे। क्या उनको कभी याद करने के लिए उस शक्ति के पुजारी नहीं बनना चाहिए? और जिस दिन अंदर से नारायण वो एक स्वीकार, तुम अभिना और न दूजा, उस दिन भक्त शायद ओठ से कंठ से सुंदर सुंदर शब्दों से और कोई वाक्य नहीं कहता है, उनका एक आहट, उनका एक श्वास वो ईश्वर की पूजा उपासना प्रार्थना में बदल जाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना ये धर्म का काम है। एक प्रश्न आया था उस दिन, विज्ञान और धर्म, विज्ञान कितना उन्नत किए परंतु धर्म क्या इस प्रकार से कोई हमारे जीवन में दिया? कितना प्रश्न सुनकर के ही कैसा लगता है, जो आध्यात्मिक है, जो आप जैसे सत्संग है, उनके मन में इस विषय में कोई द्वंद्व नहीं है। विज्ञान और धर्म में क्या डिफरेंट है? और जो प्रश्न किया उनके मन में विज्ञान के प्रति बहुत उत्कर्ष है, बहुत बड़ा एक दान हो दिया मिला विज्ञान से, उसके बदले में वो कहता है धर्म शायद हमें वो दे नहीं पाया। आप लोगों के मन में क्या भाव है भाई? देखो तो स्थिति अलग है, बिल्कुल अलग है। विज्ञान की प्रारंभ और धर्म की जो प्रारंभ है, मैं उनको बोला, समय नहीं था, जा रहा था, मैंने बोला धर्म इज ए सुप्रीम साइंस, आप इस पर विचार करो, मैं एक महीना हूं फिर आना। धर्म इज ए सुप्रीम साइंस, इसके बाद और कुछ होता नहीं है। मैंने बोला देखो विज्ञान, विज्ञान की जो भी अनुसंधान है, जो भी प्रोग्रेस है, जो भी उन्नति है, जिसको लेकर के आप अभी बहुत इन्फ्लुएंट हो, उसके कारण है वो केवल शरीर चेतना को ही, शरीर को, आदमी के शरीर को बदलने के लिए, शरीर के सुख और भोग को देने के लिए विज्ञान बहुत कुछ किया। आज हम जिस पोजीशन में, जैसे जिस रूप से हम पा रहे, ले रहे, देख रहे, ये सारा विज्ञान का ही है। इसमें हम धार्मिक को मानने में कोई कष्ट नहीं है, विज्ञान की ये प्रोग्रेस को स्वीकार करने में। तो विज्ञान आदमी के शरीर को बदलने के लिए, शरीर के सुख भोग को, वो जिस स्थिति में था उससे और बेहतर स्थिति को देने के लिए तत्पर है। और कि आज हमारे पास वो है, परंतु धर्म आदमी के चेतना को बदलने की काम करते हैं। थोड़ा कॉन्शियस विज्ञान शरीर को बदलने के, शरीर को स्थिति, शरीर के लिए काम किए, परंतु धर्म आदमी के चेतना, मनुष्य के चेतना की जो परिवर्तन, संशोधन, मार्जन, रूपांतरण, इसके लिए विज्ञान धर्म काम किया। इसलिए मैं बोलूंगा कि विज्ञान से भी गहरा है धर्म, और इसीलिए मैं उनको उस दिन बताया था, वो व्यक्ति समझ पाया कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैं इसीलिए उस दिन उनको बताया था कि धर्म इज ए सुप्रीम साइंस, उसके बाद और कुछ नहीं होता है। इसीलिए भगवत भक्तजन परिधि को स्पर्श करने से, परिधि को चोट पहुंचाने से उसके केंद्र को वो चोट पहुंचे जरूरी नहीं है, पहुंचता नहीं है, परंतु केंद्र में अगर कोई आघात, कोई चोटे दिया जाए तो वो जरूर परिधि तक पहुंच जाते हैं। एक वृक्ष के पत्ते को आप चोट दो, पहुंचाओ, दुख पहुंचाओ, चोटे दो, तो वो पत्ता जड़ों तक नहीं जा सकते, उसके वेदना, उसके दुख, परंतु उस जड़ में कुछ जोर से चोट करो, आघात करो, तो वो पत्ते तक आने में मजबूर है, बाध्य है। तो विज्ञान की जो भी थीसिस है, जो भी प्रोग्रेस है, वो तो नारायण पत्ते पर है, परिधि पर है, शरीर को बदलने में है, शरीर के सुख भोग को देने में है, शरीर को अच्छा एक स्थिति में लाने के लिए शायद चेष्टा किए हैं, लेकिन अभी हम मिले नहीं हमको वो शरीर को बदलने के लिए। परंतु हमारे धर्म, जिसको हम सुप्रीम विज्ञान कहा, ये धर्म हमारी चेतना को, अंतस को, अंतर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहरी कोई भी आघात क्यों ना हो, अंदर अगर वो मजबूती हो, जड़े अगर ठीक हो, पत्ते में आप आघात कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर जड़ों में ही आप कुछ चोटे पहुंचाते तो पत्ते भी मुरझा जाते, फूल तो खिलने की संभावना नहीं। हमारे जीवन में यही सबसे कमी है कि हम जड़, जो अंतस चेतन है, चेतना है, जिसको हम, उसको बदलने के लिए ये धर्म है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति वो है जो बाहरी परिस्थितियों से डोमिनेट नहीं होते हैं, उसके अंदर से वो मजबूती है। कितने भी झड़, झंझा, वायु, वात कुछ भी आए, वो बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि परमात्मा वो दीपक, वो प्रकाश हमारे अंतस में जला दिए हैं, जो बाहरी झंझा वायु से भी, पवन से भी वो दीपक नहीं बुझ सकती, नहीं बुझ सकती। वो शक्ति आपको अर्जन करना है, और इसीलिए ये अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म चिंतन, सत्संग, गुरु सन्निधि इसी के ऊपर है कि व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के इनर जो ग्रोथ है। नारायण, बाहर से, अंदर से हम उतना ही कमजोर, और बाहर से हम खूब लेप दे, खूब थोप दे, खूब ओढ़ ले, क्या हमारी सुरक्षा अथवा हम स्वस्थ हो सकते हैं? और आज जो स्थिति हमारे सामने है, अधिकतर यही है कि हम अंदर से बिल्कुल कमजोर बने हुए हैं, और बाहर से हम स्ट्रांग होना चाहते, मजबूत होना चाहते, इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्ट, एक दुख। इसलिए अध्यात्म, ये जो प्रार्थना, में प्रार्थना मतलब क्या है, व्यक्ति के अंदर देखो, साइंस कभी आपको बता सकते कि तुम एक प्रार्थना करो कि हम कमजोर है, साइंस आपको उल्टा कहेगा कि तुम बहुत बलवान हो, तुम एटम का आविष्कार किए हो, मारो मर जाओ मिट जाओ। परंतु हमारे धर्म कहता नहीं, तमसो मान ज्योतिर्गमय, तुम ज्योति स्वरूप हो, प्रदीप हो। विज्ञान ने आकर के देखो, प्रथम जो ज्योति है वो मिट्टी का प्रदीप था, दीपक माटी का ही तो रहा। विज्ञान ने सुविधा सुख दिया, वो प्रदीप हमने बदल दिया धातु, धातु से फिर सुवर्ण, सोने का भी प्रदीप हो सकता है, और उसमें फिर हीरे जहरात भी जुड़े हुए हो सकते हैं। परंतु वो जो मिट्टी का दीपक, जो मैसेज देके गया, संदेश, वो आज तक है। बाहरी रूप रंग धातु बदलने से वो जो मैसेज वो मिटता नहीं ना रहे। इसलिए हमारी ये जो दीपक है, बाहर से कुछ भी करो, परंतु अंदर जो प्रथम ज्योति वो अभी भी है। आप मिटने मटने वाला नहीं है, आप निर्वापित होने वाला नहीं है, आप अस्थिर होने वाला नहीं है, आप सच्चाई से दूर जाने वाले नहीं है, आप अंधकार वाला नहीं है, आप ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। धर्म हमेशा वो मूल से, उस ओरिजिनल से आपसे परिचय कराता है। और विज्ञान देखो, वही दीपक, विज्ञान को भी जलाना होगा तो वही लौ, वही बाट, वही तेल, वही घी, वही रुई, परंतु वो क्या किया, अब धातु के दीपक आ गए, अब सोने के दीपक आ गए, अब कुछ और उसमें जहरात आदि लगा दिए, तो उससे क्या हुआ। हाँ, बाहर से देखने वाला अच्छा ऐसा है वो ठीक है, परंतु नाना ज्योति को थोड़ा देखो, वही है। और वो प्रकाश, वो दीपक एक दिन अपने संपूर्ण जीवन को खत्म कर देते हैं। एक छोटा सा दीपक सायंकाल आप जलाते हैं, और वो जलता हुआ शिक्षा देता हुआ प्रातः काल तक जला, जो अखंड ज्योत जला, जलते 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 सारे उसके तैल बिंदु जल करके भस्म हो गया। रात भर वो क्या संदेश दिया कि अपने जीवन को मैं इस प्रकार से विखर दिया, प्रकाश से, हमारे ये प्रकाश जीवन भर हमने विखरा। और सुबह जैसे ही आदित्य नारायण उठा पूर्व, तो फिर लालिमा छा गई। आदित्य नारायण कहने लगे, तुमने जीवन को सफल बना दिया, तुम्हारे इस ज्ञान को मैं लेकर के मैं दीन को सफल बनाने के लिए कोशिश करता हूं। इसी प्रकार नारायण, ये जो प्रकाश ईश्वर ने दिया है, यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान योग के द्वारा आप किसको जानना चाहते हैं, कर्म के द्वारा आप किस प्रकाश को विकसित करना चाहते हैं, जो आपके वो जो आनंद स्वरूप सत स्वरूप जो प्रकाश है, वो वासना के द्वारा, कर्म के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा आवृत हो गया, आप उसको हटा करके वो प्रकाश को प्रकट करना चाहते, जो प्रकट उसको आविष्कार करना चाहते, इसीलिए कहते रियलाइजेशन, आविष्कार। आपको जलाना नहीं है, ऐसा नहीं कि बाट रखे आप जला, वो जल रहा है, वो स्वयं प्रकाश है, वो सत्य है, वो निर्वापित होने वाला नहीं है, वो जल रहा है। हमारी वासना, हमारी कर्म, हमारी पूर्व ये इसको आवृत कर दे, कर्म के द्वारा उस आवरण को हटाओ। फिर भी चित्त में जो हवा की झोंके है, ये जो वासना, इसको अपने मिटाने की कोशिश के में सूक्ष्म वासना उस लोह को फिर आघात करने पहुंचती है, फिर उपासना के द्वारा व्यक्ति उसको संभालता है। और एक समय उपासना करते 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 आता है कि अब तू, बस तू अगर संभालता है तो ये जलेगा, नहीं तो उस समय ईश्वर प्रसन्न हो जाते, अरे मैं ही जला रहा हूं, ये जो तूने स्वीकार किया, ये जो तूने एक्सेप्ट कर लिया, बस इसी में तुम्हारी कल्याण है। इसलिए नारायण प्रार्थना का मतलब ही है, बस हम गंभीर गहन में पहुंच करके, गहराई में पहुंच करके उस दिव्य ज्योति का साक्षात कर ले। वो है दिव्य ज्योति पर ब्रह्म परमात्मा, वही है हमारे इष्ट, वही हमारे गुरु, वही है हमारे कृष्ण राम काली मां, वही है, और उन्हीं के पास हम प्रार्थना को लेकर जाते हैं। इसलिए विज्ञान और धर्म, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों की स्थिति अलग है। विज्ञान बिल्कुल बाहरी जगत के प्रोग्रेस में वो लगे हैं, मनुष्य के ऊपरी जीवन के सुधार के लिए वो चेष्टा कर रहे हैं, परंतु धर्म व्यक्ति के अंदर से उसको चेतना में कुछ बदलने की। अगर जब तक हम ये जो तीन श्लोक हम लोगों ने पढ़ा अब तक, मैं इसीलिए इसको बताया, पहले था गर्भ अवस्था में हमने क्या किया, ईश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु क्या स्थिति से मैंने निकला, इस शरीर का जो कारण था वो क्या था, और वो प्रकाश उस समय से जलना प्रारंभ किया, और वो जो तत्व था शुक्र क्षणिक उसको तुमने संभाल दिया, और वो एक आकार लेते 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 प्रकट हुए, बाल्यावस्था में पहुंच गए। किसकी देखरेख में हमने पहुंचा, कौन हमारी सुरक्षा की व्यवस्था किए, कौन वो अनजान से ले आए और एक अनजान समाज में हमको डाल दिया। और ऐसा भी नहीं कि अब तुम संभालो, ऐसा नहीं कि हमने जन्म ले लिया अब तुम संभालो, वहां भी सारी बंदोबस्त पहले से कौन किया। तो फिर नारायण आज क्यों हम चिंतान्वित है कि कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा, क्या होगा। आज भी उसको आविष्कार करो कि मैं मातृ गर्भ में क्या, उससे पहले पिता के पास, पिता से माँ के पास, माँ के पास ये 9 महीना तक हमको किसने रचा, किसने बनाया, किसने खिलाया, किसने देखा, समय आने पर किसने हमको निकाल दिया धक्का दे करके। और एक अननोन जगह, अननोन व्यक्ति, और वहां मैं अनजान एक समाज में मैं आ गया, परंतु देखो सारी व्यवस्था, सब व्यवस्था करके रखा, और फिर वहां आकर के जो गर्भ से निकलने के पहले जो प्रार्थना वो जीव की, उसको स्मरण होता है तो बाल्यावस्था की वर्णन किया कि बस इंद्रियों की जो असमर्थता, परवशता, अगर कोई कीड़े मकोड़े शरीर के ऊपर से रेंग कर भी चला जाए, मच्छर काट भी ले, तो हम सिवाय चित्कार कर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लाचार अवस्था में भी तुमने देखा और आज तक तुम देख रहे हो। मेरे को भूख लगे, मेरे को कष्ट हो रहे, क्या हो रहे और इसके लिए क्या निदान है, मां कभी गलत भी कर लेते, परंतु अभी भी मैं जीवित हूं कहीं, और वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें रक्षा की है। और आते आते बचपन की खिलौना खेलते खेलते मन भरा ही नहीं था कि मैं युवा अवस्था में पहुंच गया, और अभी भी हमारे मन में, सबके मन में वो है कि बचपना बहुत आनंद का होता है। क्या बुढ़ापे आनंद का नहीं है, क्या लगता है? बुढ़ापे आनंद का तभी आप बोल सकते जब आप प्रार्थनामय बन सकते हो, अदरवाइज संभव नहीं। वृद्धत्व में वो सब गुणावली है जिसमें आप जीवन के अनुभव को टटोल करके, जीवन के अनुभव से शिक्षा लेकर के ईश्वर के पास खुलने का एक अवसर है वृद्धत्व। वृद्धत्व परम उत्कर्ष को प्राप्त करने का एक सोपान है, वो प्रकाश तो उस गर्भ से जलना प्रारंभ किया, यौवन होता हुआ वो तो वार्धक्य तक पहुंचे, किस लिए? अब वो आदित्य भगवान उदय हुआ, रात भर दीपक जला, वो दीपक की लौ खत्म होने वाला है और वो अपने ज्ञान प्रकाश वृत्ति सब आदित्य को सौंप कर जाता है। आदित्य ऊपर से कहता है कि तुम चले जाओ, तुम्हारे मैसेज, तुम्हारे संदेश, तुम्हारी जो प्रकाश है वो मैं अब बहन करके, ये है प्रकाश। तो फिर ये वृद्धावस्था यही है कि हम सब वृद्ध हैं, वृद्ध हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारे सामने एक रियलिटी, एक सत्य है कि हम ईश्वर के पास पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। प्रभु तुमने जो ज्योत जलाया, ईश्वर तुमने जो प्रकाश, तुमने जो सुरक्षा इस चेतना को दिए, इस चेतना के जो बाहरी प्रदीप है उस बाहरी प्रदीप क्षय हो रहा है शरीर, परंतु इस शरीर की जो चेतना है, चैतन्य है, वो अभी भी मजबूत है। अब इस प्रदीप को ईश्वर के द्वार में रखो, जीवन भर चेष्टा किया हमने इस प्रदीप को इसके पास रखने, उसके पास रखने, उसके पास रखने, कोई इसको संभाले, कोई इसको देखे, कोई इसको रखे, कोई इसको कुछ सुरक्षा दे, परंतु अंतिम समय नारायण कोई नहीं, वो ज्योति, वो दीपक, वो प्रकाश आपके पास है और इसी में आपकी खूबी है। अगर आपने समझ गए, संभाल गए कि इस ज्योति को कोई नहीं रख सकता है, तो आज ऑप्शन है, अवकाश है कि इस ज्योति को अपने ही परम ज्योति परब्रह्म के पास रखो। देखो कितनी शांति, कितनी सुख, कितनी सुकून, कितनी निश्चिंतता, कितना आनंद आपको मिल सकता है। और इसीलिए ये वार्धक्य में हम पहुंचे हैं। वार्धक्य ऐसा नहीं कि दुख को झेलने के लिए, कष्ट को सहन करने के लिए, मजबूरी से धक्का दे करके एक कष्ट देने के लिए परमात्मा ने वार्धक्य को बनाया, नहीं नारायण, वार्धक्य को बनाया कि इस जीवन के जो वो प्रकाश प्रदीप है उसको ईश्वर के द्वार पर पहुंचाओ, ईश्वर के चरणों में अर्पण करो प्रदीप को, प्रकाश को, और उस दिन आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर लोगे। इसलिए नारायण विज्ञान और धर्म की दो श्रेणी है, दो सोपान है, इसको समझे। मैं तो कहूंगा बस ईश्वर को अर्पण करने के लिए तैयार हो। जीवन भर हमने जो किया किया, मतलब अब एक अर्पण के अवकाश है। बस नारायण इस वार्धक्य ऐसा ना हो कि विषय आशय से ही घिर करके एक अवसाद को लेकर के, एक विषाद को लेकर के चला जाए। ये वार्धक्य की यही कर्तव्य है कि बस वो आत्म ज्योति को, स्वयं ज्योति को, परब्रह्म परमात्मा ज्योति में समर्पित करे।
शिव शिव शंभो हर हर महादेव।
बोलिए
भो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव,
शंभो हर हर महादेव।
नारायण 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 वासुदेव,
नारायण
नारायण नारायण नारायण वासुदेव,
नारायण 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 वासुदेव।
शिव शिव शंभो हर हर महादेव,
शिव
शंभो हर हर शिव शिव शंभो हर हर महादेव महादेव नारायण 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 वासुदेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव 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 शंभो हर हर महादेव शिव शंभो शिव शिव शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव हर हर महादेव नारायण 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 वासुदेव नारायण
नारायण नारायण वासुदेव
नारायण 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 वासुदेव नारायण यन वासुदेव शिव शंकर भगवान की ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।